بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، نشر الطيب في ذكر النبي الحبيب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کتاب ہے، تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی جا رہی ہے. نبی فصل ان کے ناموں میں جن کے متعلق آپ کی تربیت و رضا کے یکے بعد دیگرے ہوتا رہا. آپ کی تربیت اور آپ کو دودھ پلانے کا جو عمل ہوا ہے بچپن میں، یکے بعد دیگرے کن کن سے متعلق رہا ہے، ان کے ناموں کا بیان. آپ زمانے حمل میں تھے کہ آپ کے والد عبداللہ کی وفات ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت حمل میں ہونے کے دوران ہی والد صاحب حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی. کذا فی سیرت ابن ہشام، گویا جب آپ پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے تو آپ یتیم تھے. صرف دو مہینے حمل پر گزرے تھے کہ عبداللہ شام کو قافلہ قریش کے ساتھ تجارت کو گئے تھے. وہاں سے واپس ہوتے ہوئے مدینے میں اپنے ماموں کے پاس بیمار ہو کر ٹھہر گئے. بیمار ہو کر ٹھہر گئے تھے کہ وہاں ہی وفات پائی، مدینے میں ہی وفات پائی. اور مدینہ جو ہے حضور کا ننیال ہے. قذافی تواریخ حبیب اللہ. اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ آمینہ آپ کو لے کر مدینہ میں اپنے اقارب سے ملنے گئی تھیں. یہ واپس آتے ہوئے درمیان مکہ و مدینہ کے موضع ابوا میں انہوں نے وفات پائی. 6 سال کے تھے، ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے اپنے ننیال، واپس ہو رہے تھے تو راستے میں انتقال ہو گیا آپ کی والدہ کا. قذافی سیرت ابن ہشام. اور اس وقت ام ایمن بھی ساتھ تھیں. قذافی المواہب. پھر آپ اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہے. جب آپ 8 سال کے ہوئے عبد المطلب کی وفات ہو گئی. قذافی سیرت ابن ہشام. اور انہوں نے ابو طالب کو آپ کی نسبت وصیت کی تھی، چنانچہ پھر آپ ان کی کفالت میں رہے، ابو طالب چچا کی کفالت میں رہے. قذافی سیرت ابن ہشام. یہاں تک کہ انہوں نے نبوت کا زمانہ بھی پایا، مطلب ایک بڑے ہونے تک بھی پھر یہیں رہے ہو. اور 7 روز تک آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا. قذافی تواریخ حبیب اللہ. پھر 7 روز تک صوبیہ نے دودھ پلایا، جو ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی تھی، باندھی تھی. اور ان کے اسلام میں اختلاف ہے. اور آپ ہی کے ساتھ حضرت ابو سلمہ اور حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا. تو اس طرح حضرت ابو سلمہ اور حضرت حمزہ رضائی بھائی بھی ہوئے، آپ کے چچا بھی تھے. اور اس وقت ان کا بیٹا مسروح دودھ پیتا تھا. صوبیہ کا بیٹا جو مسروح تھا تو وہ بھی دودھ پیتا تھا. پھر حلیمہ سعدیہ نے پلایا. اور اس دودھ کے شریک بھائی بہنوں کے نام اور اسلام کی نسبت 8ویں فصل کی 4 روایت کے ذیل میں کچھ مضمون مذکور ہوا ہے. اور انہی حلیمہ نے آپ کے ساتھ آپ کے چچازاد بھائی ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا، کیونکہ اس زمانے میں عام رواج تھا ایسا. یہ عام الفتح میں مسلمان ہوئے اور بہت پکے مسلمان ہوئے. اور اس زمانے میں حمزہ بھی بنی سعد میں کسی عورت کا دودھ پیتے تھے، سو اس عورت نے بھی 1 روز آپ کو دودھ پلایا. اس اعتبار سے اس رضائی ماں میں بھی شرکت ہوگی حضرت حمزہ کی، اور وہ آپ کی رضائی ماں بن گئی. جب آپ حلیمہ کے پاس تھے تو حضرت حمزہ 2 عورتوں کے دودھ کی وجہ سے آپ کے رضائی بھائی ہیں، ایک صوبیہ کے دودھ سے، دوسرے اسادیہ کے دودھ سے. قذافی زاد المعاد. اور جن کے آغوش میں آپ رہے وہ یہ ہیں، جن کی گود میں آپ پلے ہیں، آپ کی والدہ اور صوبیہ और हलीमा और शीमा आपकी रज़ाई बहन, और उम्मे ऐमन हबशिया जिनका नाम बरकत है, ये आपको आपके वालिद से मीरास में मिली थी। उम्मे ऐमन बांदी आपके वालिद की बांदी थी हैं, जो आपको मीरास में मिली थी, और आपने उनका निकाह हज़रत ज़ैद से किया था जिनसे उसामा पैदा हुए। रदा फ़ी ज़ादिल मवाद। सल्लु अलैहि मा तला अश-शम्स वल क़मर बाद अज़-हुदा बुज़ुर्ग। तो ये क़िस्सा मुख्तसर है। तो ये वो नाम है कि आपने किन किन का दूध पिया और किन किन के आवश में आप रहे बचपन में। दसवीं फसल, शबाब से नबूवत तक के बाद हालात में। पहली रिवायत, जब आप 14 या 15 साल के हुए और एक कौल में 20 साल के हुए, तो कुरैश और कैस ऐलान में एक लड़ाई हुई, तो उस वाक़े के बाद तारीखों में आप भी तशरीफ़ फरमाए मारिका हुए हैं, और आपने फरमाया है कि मैं अपने आमाम को, अपने चचाओं को अदू के तीरों से बचाता था, दुश्मन के तीरों से बचाता था, और इस वाक़े का बड़ा क़िस्सा है। क़िदा फ़ी सीरत इब्न हिशाम। फ़ायदा, इससे आपका अव्वल ही से शजा होना साबित होता है, बहादुर होना, ज़ाहिर जंग में शिरकत करना, तो दुश्मनों से बचाना, अपने लोगों को दुश्मन से बचाने का मतलब ये कि खुद आगे रहना होता है ना। दूसरी रिवायत, जब आप 25 साल के हुए, तो हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद ने, जो कि कुरैश में एक मालदार बीबी थी और ताजिरों को अपना माल अक्सर मुजारबत पर दिया करती थी, देती रहा करती थी, मुजारबत का मतलब होता है माल दे के कारोबार में शरीक हो जाना, आपके सिद्क़ और अमानत और हुस्न मामला और अखलाक की खबर सुनकर आपसे दरख्वास्त की कि मेरा माल मुजारबत पर शाम की तरफ ले जाइए और मेरा ग़ुलाम मैसरा आपके साथ जाएगा। आपने कबूल फरमाया, यहाँ तक कि आप शाम में पहुँचे, मुल्क शाम में पहुँचे, और किसी मौके पर आप एक दरख्त के नीचे उतरे, वहाँ एक राहिब का सौमा था, गिरजा था, चर्च था। उस राहिब ने आपको देखा और मैसरा से पूछा कि ये कौन शख्स हैं। मैसरा ने कहा कि कुरैश अहले हरम में से एक शख्स हैं। राहिब ने कहा कि इस दरख्त के नीचे, जिस दरख्त के नीचे आप पहुँचे थे, राहिब ने कहा कि इस दरख्त के नीचे सिवाय नबी के कोई कभी नहीं उतरा। आप शाम से खूब नफ़ा लेकर वापस हुए और मैसरा ने देखा कि जब धूप तेज़ होती थी तो दो फरिश्ते आप पर साया करते थे। जब आप मक्का पहुँचे तो हज़रत खदीजा को उनका माल सुपुर्द किया तो देखा कि दो गुना या उसके करीब नफ़ा हुआ। ये तो आपके सिद्क और अमानत की बय्यन दलील थी। और मैसरा ने उनसे उस राहिब का कौल, राहिब ने इनके बारे, आपके बारे में जो कहा था वो, और फरिश्तों के साया करने का किस्सा बयान किया। हज़रत खदीजा ने वरका इब्ने नौफल से, जो कि उनके चचाजाद भाई और ईसाई मज़हब के बड़े आलिम थे, ज़िक्र किया। वरका ने कहा कि ए खदीजा, अगर ये बात सही है तो मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं, और मुझको कुतुब समाविया से मालूम है कि इस उम्मत में एक नबी होने वाला है और उसका यही ज़माना है। हज़रत खदीजा बड़ी समझदार थीं, पूरा नक्शा उनके जहन में आ गया। यह सब सुनकर आपके पास पैगाम भेजा कि मैं आपकी कराबत और अशरफुल कौम और अमीन और खुशखू और सादिकुल कौल होने के सबब आपसे निकाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर आपके पास पैगाम भेजा कि मैं आपकी कराबत यानी ताल्लुकात, रिश्तेदारी और अशरफुल कौम, कौम के आप अशरफ हैं और अमीन हैं और खुश अखलाक हैं और सादिकुल कौल, बात के सच्चे हैं, सादिकुल कौल होने के सबब आपसे निकाह करना चाहती हूँ। आपने अपने आमाम से ज़िक्र किया, अपने चचाओं से, और उनके अहतमाम से निकाह हो गया। खिदाफी से तकनीश। उस राहिब का नाम नस्तूरा था, नस्तूरा पासे नस्तूरा था। खिदाफी तवारीख़ हबीबीला। तीसरी रिवायत, जब आप 35 साल के हुए, कुरैश ने खाने काबा की अजसरन तामीर करने का इरादा किया। जब हजर असवद के मौके तक तामीर पहुंची तो हर कबीला और हर शख्स यही चाहता था कि हजरत असवद को उसकी जगह पर मैं रखूं। करीब था कि उनमें हथियार चले, लड़ाई हो गई, तलवारें निकल आ गई। आखिर अहलुर राय ने यह मशवरा दिया कि मस्जिद हराम के दरवाजे से जो सब में पहले आवे उसके फैसले पर सब अमल करो। सो सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सब देखकर कहने लगे कि ये मोहम्मद हैं, अमीन हैं, और कुरैश आपको नबूवत से पहले अमीन के लकब से याद करते थे, और आपकी खिदमत में यह मामला पेश किया। आपने फरमाया कि एक बड़ा कपड़ा लाओ। सुना से लाया गया। आपने हजरत असवद अपने दस्ते मुबारक से उस कपड़े में रखा और फरमाया कि हर कबीले का आदमी इस चादर का एक एक पल्ला थाम ले और खाने काबा तक लावें। जब वहाँ तक पहुँचा आपने ख़ुद उसको उठाकर उसके मौके पर रख दिया। फैदा फी सिरत ख़ुद भी रख दिया और दूसरे भी खुश हो गए, सबको हिस्सा मिल गया। फैदा फी सिरत इब्ने हिशाम। इस फैसले से सब राज़ी हो गए। उठाने का शर्फ तो सबको हासिल हो गया, और चूंकि आपने फरमाया था कि सब आदमी मुझको उसके मौके पर रखने के लिए अपना वकील बनाए, कि फेल वकील का वो मंजिल मुवक्किल के होता है, वकील का काम मुवक्किल के काम की जगह पर होता है ना, तो इस तरह रखने में भी सब शरीक हो गए। खिदा फी तवारीख हबीबिल्लाह बितगयीर अल्फाज फी खदीजत अल-कुबरा व क़िस्सतहा अजाइबुन या औली अल-अबसार फअतबिरू इख्तारत अल-मुस्तफा बअलन वक़द नज़रत في معجزات رسول الله تنتشر يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به العصور 11वीं फसल नुज़ूल वही में और कुफार की मुखालफत में। जब आप 40 बरस के हुए आपको खलवत महबूब हो गई, तन्हाई महबूब हो गई। जब कभी अल्लाह तबारक व तआला का खास ताल्लुक किसी को नसीब होना होता है तो इस दुनिया से बेताल्लुकी और तन्हाई की पसंदीदगी उसको हासिल होती है। ये लिखा है सूफिया ने, उलमा ने। चुनाचे खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में भी ऐसे हुआ। जब आप 40 साल के हो गए तो आपको तन्हाई महबूब हो गई। आप गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे और कई कई रोज़ रहते। और नबूवत से 6 महीने पहले से आप सच्चे और वाज़े ख्वाब देखने लगे थे कि एक दफ़ा अचानक रबीउल अव्वल की 8वीं दोशंबा के दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और सूरह इकरा की शुरू की आयतें आप पर लाए और आप मुशर्रफ़ बनबूवत हो गए। उसके एक अरसे के बाद सूरह मुद्दसिर की आयतें अव्वल की नाजिल हुईं तो आपने हसब हुकुम फ़ानदिर दावत इस्लाम शुरू की, मगर पोशीदा। फिर यह आयत आई फसदा बिमा तो उमर, आपने अलल एलान दावत शुरू की, बस कुफार ने अदावत और ईज़ा शुरू की, दुश्मनी और तकलीफ़ पहुंचाने का काम शुरू किया। लेकिन अबू तालिब आपकी हिमायत करते थे। एक बार कुफार ने जमा होकर अबू तालिब से कहा कि या तो तुम मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो अबू तालिब, वरना हम तुमसे लड़ेंगे। उन्होंने हवाले करना कबूल न किया। कुफार ने आपके कत्ल का मुसम्मम इरादा किया। अबू तालिब आपको लेकर तमाम बनी हाशिम व बनी मुत्तलिब के एक शुअब यानी घाटी में वास्ते मुहाफ़ज़त के जा रहे, हिफाजत के वास्ते वहाँ चले गए शुअब अबी तालिब में। और कुफार ने आपसे और बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब से बिरादरी क़ता कर दी, ताल्लुकात अपने तोड़ दिए, बायकॉट कर दिया, और सौदागरों को मना कर दिया कि उन लोगों के पास कोई चीज़ न भेजें, और एक कागज़ इस क़त्ई ताल्लुक का अहद का लिख कर खाने काबा में लटका दिया। 3 साल तक आप और बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब इस शुआब में नहायत तकलीफ़ में रहे। 3 साल गुजरे हैं उसमें शुआब अबी तालिब में पूरे ख़ानदान के साथ बायकॉट के साथ, दुकान वालों को कोई चीज़ बेचने नहीं देते थे, दुकान वालों से कोई चीज़ ख़रीदने नहीं देते थे, ताजर अपना माल लेके आके उनको नहीं बेच सकते थे, ये ताजरों के साथ कुछ मामला नहीं कर सकते थे, उसकी निगरानी भी रहती थी, ये लोग महसूर होके उसमें रह गए थे। 3 साल गुजरे उसमें। आखिरकार आपको वही के ज़रिए से इस बात से इत्तला हुई के कीड़े ने अहदनामे के कागज़ को खा लिया है, वजूद अल्लाह के नाम के कि उसमें कहीं कहीं था, एक हर्फ नहीं छोड़ा, सिवाय अल्लाह का लफ्ज़ है ना, कहीं जिक्र आ गया होगा, उसको नहीं छोड़ा, बकिया जो है ना सबको खा लिया। आपने ये हाल अबू तालिब से कहा। उन्होंने शुअब से निकल कर ये बात कुरैश से बयान की और कहा कि उस कागज़ को देखो, अगर मोहम्मद का बयान गलत निकले तो हम उन्हें तुम्हारे हवाले कर देंगे, और अगर सही निकले तो इतना तो हो कि तुम इस क़त रहमी और अहद बद से बाज आ जाओ। ये गलत किस्म के माहदे से और ये रिश्तेदारी को ख़त्म करने से तो बाज आओ। कुरैश ने काबे पर से उतार कर उस कागज़ को देखा, फिल वाक़े ऐसा ही था, सारा कीड़ा खा गए थे उस अहदनामे। कुरैश उस जुल्म से बाज आए और अहदनामे को चाक कर डाला। अबू तालिब आपको और बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब को लेकर शुआब से निकल आए और आप बदस्तूर दावत इल्लाह में मशगूल हुए। कदा फी तवारीख़ हबीबिल्लाह। और ये अहदनामा बख़त मंसूर इबन इकरमा इबन हिशाम लिखा गया था और गुर्रा मुहर्रम सन 7 नबूवत को लटकाया गया था। उसका हाथ खुश्क हो गया, जिसने लिखा था उसका हाथ खुश्क हो गया, और नबूवत से साल दहम में शुआब से बाहर आए थे। नबूवत के 10वें साल आप शुआब अबी तालिब 7 में गए थे, 10वें साल में बाहर आए, और इसी साल में हिसार शुआब से निकलने के 8 माह बाद, वहाँ से आने के 8 महीने के बाद अबू तालिब का इंतकाल हो गया, और उनके 3 दिन के बाद हज़रत खदीजा की वफ़ात हो गई। कदाफ़ी शमामा बाद वफात हज़रत खदीजा के आपके दो निकाह करार पाए। एक हज़रत आयशा से कि उस वक्त 6 साल की थी, मक्के में उनका निकाह हुआ, और मदीना आकर 9 बरस की उम्र में रुखसत होकर आईं। बतौर मौजिज़ा इनकी ग्रोथ, इनकी बढ़ोतरी 9 साल की उम्र में ही बड़ी औरतों की तरह हो गई थी। और दूसरा निकाह हज़रत सौदा बिन्त ज़मा से कि बेवा थी मक्के में निकाह हुआ और आपके साथ मदीने में आई और हमेशा अजवाज में रहीं। कदाफ़ी तवारीख़ अभी मीरा। इस साल दहम में आप साल दहम 10वें साल में आप ताइफ़ बनी सकीफ़ की तरह तशरीफ़ ले गए, और ये जाना दावत इस्लाम के लिए और नींद इसलिए था कि उनसे कुछ मदद लें, क्योंकि वफ़ात अबू तालिब के बाद कोई बावजाहत आदमी आपका हामी न था। वहाँ कबीलेवारी बुनियादों पर जीना होता था, कोई आदमी है साथ देने वाला, सपोर्ट करने वाला, तो दूसरे लोग खामोश रहते थे, वरना आदमी बेयारो मददगार हो जाता था। कोई हुकूमत का निज़ाम नहीं था, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई नाका नहीं, कोई चौकी नहीं, कोई अदालत नहीं, किसको बोलेंगे? तो इस वजह से कोई आदमी होना पड़ता था जिसकी निगरानी हो, जिसकी हिमायत हासिल हो। तो इसलिए आप चूँकि अबू तालिब भी नहीं रहे थे, तो फिर इस वजह से आप उनसे ताइफ वालों से हिमायत लेना चाहते थे कि बावजाहत आदमी आपका हामी हो जाए। लेकिन वहाँ के सरदारों ने आपकी कुछ मदद न की, बल्कि सिफले लोगों को बहका कर आपको बहुत तकलीफ़ पहुँचाई। आप वहाँ से मलूल होकर मक्का को वापस हुए। जब आप बतन नखला में के एक दिन की राह पर मक्के से है पहुँचे, रात को वहाँ रह गए। बतन नखला एक जगह का नाम है, मक्के से एक दिन के रास्ते पर वहाँ पहुँचे तो रात वहाँ क़याम फरमा लिया आपने। आप कुरान मजीद नमाज में पढ़ रहे थे कि 7 या 9 जिन नैनवे के एक क़रिया है नैनवे के मोसिल में वहाँ पहुँचे और कलामुल्लाह सुनकर ठहर गए। जब आप नमाज पढ़ चुके तो वो ज़ाहिर हुए, उन्हें इस्लाम की तरफ दावत की, वो सब बेतवक्फ़ मुसलमान हो गए, बेतकल्लुफ़, बग़ैर ठहराव के, बग़ैर इंतज़ार के फ़ौरन इस्लाम में दाखिल हो गए, और उन्होंने अपनी कौम को जाकर इस्लाम की दावत दी। सूरह अहकाफ आयत वही सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नी में इसी क़िस्से की तरफ इशारा है। फिर आप मक्का तशरीफ़ लाए और बदस्तूर हिदायत खल्कुल्लाह में मशगूल हुए, और आप उकाज मजन्ना दिल मजाज में कि अरब के बाज़ार थे, असवाक अरब थे, जाते मुख्तलिफ़ बाज़ार हुआ करते थे, एक का नाम उकास था, एक का नाम मजन्ना था, एक का नाम दिल मजाज था। जाते थे और दावत करते थे, मगर बाजार के बाज़ार में मुख्तलिफ़ कबीले सामान तजारत लेके आते थे जाते थे, मगर कोई कबीला मुतवज्जे न होता। यहाँ तक कि सन 11 नबूवत में, नबूवत के 11वें साल में, आप मौसम हज में इस्लाम की तरफ दावत फरमा रहे थे कि कुछ लोग अंसार के आपको मिले मदीने के आए हुए। आपने उनको दावत इस्लाम की। उन्होंने यहूद मदीना से सुना था कि एक पैगंबर अनकरीब पैदा होंगे और वो अंसार से मगलूब रहते थे यहूदी, और कहते थे कि जब वो पैगंबर पैदा होंगे हम उनके साथ होकर तुमको कत्ल करेंगे। मदीने के यहूदी अंसार को ये बोलते थे कि अभी तो तुम हम पे हावी हो, एक पैगंबर आने वाले हैं, वो आएंगे तो उनको लेकर हम तुम पे चढ़ाई करेंगे और तुमको कत्ल करेंगे। अंसार ने आपकी दावत सुनकर कहा कि ये वही पैगंबर मालूम होते हैं जिनका जिक्र यहूद करते हैं, लेकिन ऐसा न हो कि यहूद हमसे पहले उनसे आ मिले। तो 6 आदमी उनमें से मुशर्रफ बइस्लाम हो गए और इकरार किया कि आइंदा साल हम फिर आएंगे। मदीना जाकर उन्होंने आपका जिक्र किया और हर घर घर आपका जिक्र पहुंचा दिया। अगले साल के नबूवत से 12वां साल था, 12 आदमी आपसे आकर मुलाकात की, 5 पहलों में के और 7 और। उन्होंने अहकाम इस्लाम और इताअत पर बैत की, उसका नाम बैत उकबे उला है। और आपने हसब दरख्वास्त उनकी मुसाब इब्ने उमैर को तालीम कुरान मजीद के वास्ते और शरा इस्लाम की तालीम के वास्ते मदीना को भेज दिया। मुसाब इब्ने उमैर को पहले भेज दिया तालीम के लिए। इससे ये बात जहन में रखने की होती है कि तालीम की अहमियत इतनी है कि आप हिजरत करने से पहले ही वहाँ मदीने मुनव्वरा को उस्ताद को भेज दिया। मुसाब ने तालीम कुरान और शराए और दावत इस्लाम की दावत इस्लाम की और अक्सर आदमी अंसार में के मुसलमान हो गए। थोड़े उनमें से बाकी रहे। फिर अगले साल के नबूवत से 13वां साल था, 70 आदमी शुरफाए अंसार में से आए और मुशर्रफ इस्लाम हुए और अहद व पैमान आपके साथ किया कि आप जो मदीने को तशरीफ़ लाएंगे हम खिदमत गुजारी में कोताही न करेंगे और जो कोई दुश्मन आपका मदीने पर चढ़ावेगा हम उनसे लड़ेंगे और जानसारी में किसी किस्म की कोताही नहीं करेंगे। इसी का नाम बैत उकबा सानिया है। उकबा के माने घाटी के हैं। एक घाटी पर ये दोनों बैतें हुई थीं, इस वजह से इसका नाम उकबा है, बैत उकबा। तारीख कदा फ़ी तारीख़ हबीबिल्लाह वसीरत इब्ने हिशाम। يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به العصور اے رب صلات و سلام ہمیشہ ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے حبیب پر اپنے اس حبیب پر اس کے جن سے زمانے مزین ہو گئے من زانت به العصور عصر عصر اس کی جمع زمانے جس سے مزین ہو گئے اپنے اس حبیب پر صلات و سلام ہمیشہ نازل فرمائیے بارہویں فصل معراج کا واقعہ ہے اور اس فصل کو بوجہ محتم بشان ہونے کے ملقب بتنویر السراج فی لیلۃ المعراج کرتا ہوں، یعنی یہ بہت محتم ہونے کی وجہ سے اس کو ایک پورا رسالے کی شکل میں کر دیتا ہوں۔ تصوف کے ذریعے سے جو بات چاہی جاتی ہے وہ بہت خاص ہے۔ دین کا، مذہب کا، اللہ کا ایک خیال بندے کو ہوتا ہے، یعنی آدمی کے خیال میں دین ہوتا ہے، خیال میں مذہب ہوتا ہے، خیال میں اللہ ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں۔ اس سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کر علم ہوتا ہے، اس کا دین کا علم ہوتا ہے، علم کی تفصیلات ہوتی ہیں، حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط، اقوال میں अकीदों में, आमाल में। दीन का इल्म जब अक़वाल में आता है तो सच और झूठ का इम्तियाज़ देता है, जब अकीदों में आता है तो हक़ और बातिल का इम्तियाज़ देता है, जब आमाल में आता है तो सही और गलत का इम्तियाज़ देता है। सही और गलत, हक और बातिल, सही और गलत, सच और झूठ, ये दर्जे हैं। फिर उसके बाद में दीन अमल में आता है, कि उस इल्म के मुताबिक अमल। ये लिखते हैं बात सूफिया कि अभी तक भी आदमी दीन से दूर होता है, अभी भी आदमी दीन से थोड़ा फासले पर होता है। अमल में आ गया तो भी फासले पर है, इल्म में आ गया तो भी फासले पर है, ख्याल में आ गया तो भी फासले पर है। दीन को एक खारिजी वजूद दे रहा है, अमल के जरिए से पेश कर रहा है उसका अमल। दीन को सोचता है, दीन को जानता है, उस दीन के जानने के मुताबिक परफॉर्म करके उसको एक खारिजी वजूद दे रहा है। एक मरहला होता है आदमी के दीन होने का, कि अभी आदमी खुद दीन नहीं बना, उसको इन लोगों के नज़दीक कहते हैं कि दाखिली तौर पर आदमी का दीनदार होना, ये अलग मरहला है बोलते सूफिया। दाखिली तौर पर इंटरनलाइज होना, मुस्लिम बीन, मुसलमान होना, अंदर से आदमी बातिन से अपने सरेंडर हो जाए, अपने हर हर अंसुर में, हर हर जुज में, और अल्लाह तबारक व ताला की हुजूरी में आ जाए, और अल्लाह तबारक व ताला ही से उसको मोहब्बत हो, अल्लाह ही से उसको अकीदत हो, अल्लाह ही से उसका ताल्लुक़ हो, और आदमी अल्लाह की पसंद के मुताबिक हो जाए। चूँकि अभी तक उन्हें उस अल्लाह की पसंद के मुताबिक एक अमल करके बता रहा था कि ऐसा होता बोल के, लेकिन अमल पेश करने वाला भी अंदर से वैसा होना ज़रूरी नहीं रहता, चूँकि मुनाफ़क़त में ऐसा हो सकता है। बोलने वाला भी अंदर होना वैसा ज़रूरी नहीं, चूँकि मुनाफ़क़त में ऐसा हो सकता है, उसका एक इल्म है जिसको वो जाहिर कर, अगर मुनाफ़क़त में नहीं भी है तो भी फ़र्क होता है, गैर मुनाफिक में है तो भी फ़र्क हो सकता है। तो सूफिया जिस दीन की दावत देते हैं वो हकीकत दीन कहलाता है और रूह दीन कहलाता है और मंशा दीन भी कहलाता है, कि मकसद अल्लाह पाक का बंदा है, बंदे की ज़ात और उसकी पर्सनालिटी का अंदर बाहर से अल्लाह तबारक व ताला का हो जाना है। मंशा तो वो है ना, उसी लिए उसके अमल करवाया जाता है, उसी लिए जो है ना उसको इल्म दिया जाता है, उसी लिए वही नाजिल की गई। तो इसलिए हजरत सूफिया मकसद बेअसत के सबसे मोहतम बिशान काम में होते हैं। हजरत सूफिया मकसद बेअसत के, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के मकसद के सबसे अहम काम में होते हैं। तो इसलिए सिलसिले में दाखिल होने वाले, तसव्वुफ में शिरकत करने वाले, तसव्वुफ को यानी चाहने वाले, उनका अंदाज़ ये चाहा जाता है, ये कहते हैं सूफिया कि आदमी साहिब हाल हो, इल्मन भी दीनदार हो, अमलन भी दीनदार हो, हालन भी दीनदार हो। उनके नज़दीक जब तक आदमी साहिब हाल नहीं होता, यानी अंदर से ये कैफियत में विजदान में नहीं आ जाता उसके दीन, उन्हें उसको कबूल नहीं किया, ये कहते हैं वो लोग। फिर वो हाल भी टेम्पररी ना हो, वो हाल भी टेम्पररी ना हो बल्कि मुस्तकिल हो जाए, तो उसको साहिब मकाम कहते हैं। हाल और मकाम का ये मतलब है। तो सूफिया जो है ना दीन के हाल और मकाम की दावत देते हैं, ये बेसिक बात हुई। दीन का हाल और मकाम जो है अंदर से वैसा हो जाने का नाम है, अपने नफ्स के साथ, अपने दिल के साथ, अपने जज्बात के साथ, अपने एहसासात के साथ, अपने शुऊर के साथ, अपने विजदान के साथ। कि शौरी बंदा हो जाए, और इसी का नाम बंदा होना है। एक काम भी अगर अल्लाह ताला की हुजूरी के बगैर अपनी मर्जी से हुआ तो बंदगी नहीं हुई अभी, क्योंकि बंदा अभी नहीं बना। बंदा बोलते नहीं इसको, बंदा तो किसी के ताबे होने का नाम है। बंदगी तो किसी की ताबेदारी का नाम है, तो जिसमें आप अपनी मर्जी चलाएंगे उसमें बंदगी तो नहीं रही ना फिर। ये है वो चीज़ जो सूफिया जो है ना अपनी मर्जी ख़त्म करने की जो मश्क कराते हैं, और मर्जी ख़त्म करने की सबसे बेहतरीन मश्क जो है ना वो शेख की मर्जी के सामने अपनी मर्जी को फना करना सीखने पर आती है। मर्जी ख़त्म करने का है ना, तो जब मर्जी दूसरे की मर्जी को आप कबूल करने के आदि कब होंगे, जब आप अपनी मर्जी को ख़त्म करने के आदि होंगे। तो मरहला वहाँ से शुरू होता है मर्जी के ख़त्म करने का, और इसी वजह से शेख जो है उथल पुथल करता है। अगर आदमी का नफ्स नहीं मरा है तो उन्हें अरे कभी ऐसा बोलते कभी वैसा बोलते कभी ऐसा करते कभी वैसा करते गया काम से, क्योंकि उसके मिजाज में सरेंडरिंग आई नहीं। अमीर की इताअत की जो तालीम दी जाती है इस्लाम में उसकी गरज भी यही होती है कि जो अमीर की इताअत करेगा वो अल्लाह के रसूल की कर सकता है, जो अल्लाह के रसूल की करेगा वो अल्लाह की करेगा। जिसको अपने गैर की बात अपने ऊपर लादने की आदत हुई वही अपनी मर्जी छोड़ सकता है सब। तो जिस बात की फिक्र करनी है वो बात ये है कि अपने शऊर में अपने एहसास में एक जिंदा जिंदा अल्लाह का शऊर जिंदा रखना, वतवक्कल अलल हय, अल्लाह ताला खुद ही फरमा रहे हैं क्योंकि अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है, लेकिन अल्लाह पाक है और वो जिंदा है और वो हाजिर है और वो देख रहा है और वो सुन रहा है और वो जानता है और मैं उसके सामने हूँ, ये सब कहाँ याद रहता है? ये सब याद नहीं रहता। हज़रत सहाबा की जो ख़ास बात थी वो यही थी, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उनको मिल गया था, आपकी तरबियत से उन्हें ये चीज़ हासिल हो गई थी। वो रात में दिन में खलवत में जलवत में बीवी बच्चों में कारोबार में लड़ाई में दुश्मन के साथ रहने की सूरत में बिल्कुल सामने होते थे अल्लाह पाक के, ज़िंदा अल्लाह के सामने होते थे, कुदरत वाले अल्लाह के सामने होते थे, बड़े अल्लाह के सामने होते थे, खालिक और मालिक और रब और हाकिम अल्लाह के सामने होते थे। मैदान जंग में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक काफिर को पटक दिया, गिरा दिया और तलवार सूद के उसके ऊपर बैठ गए ताकि उसका सर उसके जिस्म से अलग करें। उसने नफ़रत की वजह से गुस्से की वजह से कुछ न कर सकने की वजह से आपके मुंह पे थूक दिया, काबू में आ गया था हर तरीके, वो खुद कुछ कर नहीं सक रहा था, मरने ही वाला था, तो कम अज़ कम मैं अपनी नफ़रत का इजहार इससे ऐसे करूं, बल्कि उसने मुंह पे थूक दिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, बस हज़रत अली सीने पे से उठ गया। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, उसने पूछा क्यों उठ गए, तो कहने लगे तूने थूका तो मुझे गुस्सा आ गया, मुझे फौरन एहसास हुआ कि कहीं अल्लाह को बुरा ना लग जाए कि मैं अपने लिए मारा तेरे को, क्योंकि मैं तो अल्लाह की हुजूरी में हूँ, उनको अच्छा लगना बुरा लगने का ही मसला सारा है। मुझे ख्याल आ गया कि कहीं अल्लाह को बुरा ना लग जाए कि मैंने गुस्से में तुझे मार दिया, अपनी वजह से मैंने मारा तुझे, मैं तो अल्लाह की वजह से तुझे काट रहा था, और अल्लाह पाक किसी शिरकत को गवारा नहीं फरमाता, अल्लाह को नियत में दो दो चीज़ें पसंद नहीं होती। तो मैंने सोचा कि वो इखलास और वो अल्लाह की रज़ा और वो खुशनुदी जो अल्लाह ताला को चाहिए होती है अमल से, वो शायद मैं नहीं हासिल कर सकूँगा तुझे मार के, इसलिए मैं हट गया। इतना असर हुआ उस काफिर के दिल पर कि वो मुसलमान हो गया, यार तुम लोग इतने बेनफ्स हो, इतने मुखलिस होते हो, इतने अल्लाह की हुजूरी में रहते हो, ये सोचने के एतबार से ये बात है कि यहाँ पर अल्लाह की हुजूरी में रहना कितना बड़ा काम है, और अल्लाह की हुजूरी का इतना गलबा कि इस मोमेंट में, जबकि वो भी मारने की कोशिश में है ना इनके, जाहिर है ये थोड़ी है कि किसी छोटे को ऐसे पकड़ के बच्चे को, मुर्गी के बच्चे को दबाया हुआ, ऐसा तो नहीं था ना, वो भी बहादुर मैदान जंग का खिलाड़ी, वो भी तलवार लेके ही लड़ रहा था, ऐसे वैसे थोड़ी लड़ रहा था, वो भी हमला कर सकता है। उस मकाम पे, उस मकाम को छोड़ देना, उस जगह को छोड़ के मैदान दुश्मन के हाथ में एक माना में दे देना, कोई खेल नहीं है। कैसी हुजूरी थी भाई, बड़े अजीब हुजूरी वाले, अल्लाह के पास, अल्लाह के सामने होते थे ये लोग, तो वो हाल था, वो फीलिंग जो है ना उसी को हाल कहते हैं। हाल फील का नाम है, फीलिंग का नाम है, एहसास का नाम है, अंदर से होने वाली उस कैफियत का नाम है जो आदमी के शुरू में होती है। तो इस्लाम को जानना, इस्लाम पर अमल करना और मुसलमान हो जाना, अंदर से मुस्लिम हो जाना। قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ربنا وجعلنا مسلمين اللہ آپ ہمیں ہی مسلم بنا دیجئے۔ ایک اعتبار ہے یہ، ایک اعتبار عام تفسیر کا ہے کہ آپ کا جو حکم ہو ماننے والے بن جائیں، ایک یہ کہ وجعلنا آپ ہمیں ہی بنا دیجئے، ہمارے وجود کو ہی بنا دیجئے، ہمارے وجود کو، ہماری روح کو، ہمارے جسم کو، ہمارے اعضاء کو، ہمارے خون کو، ہمارے گوشت کو، ہمارے پوست کو، ہماری سماعت کو، ہماری بینائی کو، ہماری گویائی کو، ہمارے جذبات کو بنا دیجیے آپ ہم کو مسلمان۔ یہ ہے وہ کوشش کا مرحلہ جو ایک عالم کو عالم بننے کے بعد بھی کرنا پڑتا ہے، چونکہ عالم بہت دور ہوتا ہے، صرف عالم ہو جانے سے یہ مرحلہ طے نہیں ہوتا، اس کو کرنا پڑتا ہے۔ غیر عالم ہو کر یہ مرحلہ طے نہیں ہوتا، اس کو کرنا پڑتا ہے، اور یہ مرحلہ غیر عالم بھی طے کر سکتا ہے، عالم بھی طے کر سکتا ہے، اور عالم کو بھی کرنا پڑتا ہے، غیر عالم کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ مرد کو بھی، عورت کو بھی، سب کو ہی۔ اور یہی مطلب ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ، پورا مسلمان ہو جانا، کوئی حصہ نکلنا نہیں۔ چونکہ تھوڑا سا بھی نکلیں گے تو وہ شیطان کا نقش قدم ہوگا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان جو ہے نا وہ دشمن ہے، اور دشمن آپ کو دوست کے راستے پہ نہیں چلنے دے گا۔ تو ایک قدم بھی اگر ہٹ گیا تو وہ دوست کے راستے سے ہٹائے گا۔ اور اسی لیے نفس کو دشمن کہا جاتا ہے کہ وہ دوست کے راستے سے ہٹاتا ہے۔ ان اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبیک، تمہارا بڑا دشمن وہ نفس ہے جو تمہارے پہلوؤں کے درمیان ہے۔ اللهم اعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعن على تلاوة القرآن وكثرة الذكر لك وشكر لك، اللهم ارزقنا حلاوة ذكرك، اللهم ارزقنا حلاوة ذكرك، اللهم ارزقنا حلاوة ذكرك، اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا، واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا، وقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك، واذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم، واقرر اعيننا من عبادتك، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانه، فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم انا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات من أوصانا بالدعاء، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات من أوصانا بالدعاء، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات من اوصانا بالدعاء، اللهم اشفنا واشف من اوصانا بالدعاء، اللهم اشفنا واشف من اوصانا بالدعاء، اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره، اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات اعمالنا، احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات اعمالنا، احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات اعمالنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.